मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं आप सबसे हमारे यहाँ के संविधान का जो विकास हुआ है उस पर बातें करने जा रहा हूँ। हालांकि मेरी इस बात को सुनकर आप थोड़े से चौंक गए होंगे कि सर तो बात कर रहे थे फ्रीडम मूवमेंट पर और ये तो आ गए संविधान के विकास पर, यानी कि अब जिस विषय पर बात हो रही वो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मैं हिस्ट्री के फ्रीडम मूवमेंट पर आप सबसे बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का भी स्मरण है कि मैं उसकी जो एक डेमोक्रेटिक करेक्टर रहा है उसके ऊपर बातें कर रहा हूं। तो मैं यहां संवैधानिक विकास के जरिए फ्रीडम मूवमेंट को आप सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, जो भारतीय परिषद एक्ट था 1892 का, ये इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद जो अगला एक्ट जो आता है, या कह लीजिए जो सुधार का प्रस्ताव आता है, बल्कि हम कहें वो ये था, हमारे सामने था मिंटो मार्ले सुधार प्रस्ताव 1908। हमने 92 देख लिया है और 92 के बाद हम सीधे सीधे 1908 पर आ रहे, यानी कि 15-16 साल के बाद हमें यह घटना देखने को मिलती है। तो यह दरअसल क्या है, इस बीच में ऐसा क्या हुआ? जब आप फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही देखिए होता क्या है कि जब कोई भी आंदोलन शुरू होगा तो आप अचानक आक्रोश के साथ शुरू नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्रिटेन के खिलाफ हम आजादी चाहते हैं, तो आजादी वो हमें प्लेट में रख करके नहीं दे देंगे, सीधी सी बात है। हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत लंबा संघर्ष हमें करना पड़ा। तो यहां पर अगर आप सामान्य समझ का इस्तेमाल करें तो सिचुएशन क्या होगी, दो सिचुएशन होगी। नंबर वन, कि इसकी जो शुरुआत होगी वो थोड़े से विनम्र तरीके से ही होगी कि हम कोई बात मांगेंगे, यानी कि अपना प्रस्ताव उनको देंगे और प्रस्ताव देने के लिए हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसा संगठन अस्तित्व में आ चुका है। हमारे प्रस्ताव पर वो विचार करेंगे और विचार करने के बाद ज्यादातर बातें वो ठुकरा देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सब कुछ बड़ी आराम से दे दिया गया, क्योंकि इस बात को जानते हैं कि अगर सारी मांगे मान ली गई और बड़े आराम से मान ली गई तो आगे तो पता नहीं ये क्या मांगने लगेंगे, फिर हमारा राज्य टिका कैसे रहेगा। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि राज्य का चरित्र होता है कि आप मांगिए तोप तो वो देंगे आपको पिस्तौल, और जो मांगने वाले हैं वो भी जानते हैं कि हमें तोप नहीं मिलने वाली, लेकिन वो जानते हैं कि अगर हमने पिस्तौल मांग लिया तो फिर पिस्तौल भी नहीं मिलेगी। तो ये एक चरित्र होता है। तो हम मांगेंगे, वो उस पर विचार करेंगे, उसमें से वो थोड़ा सा देंगे और ज्यादातर रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्शन होगा, तो जब रिजेक्शन होगा तो फिर क्या होगा, फिर से आप दोबारा मांगेंगे, उसमें से फिर थोड़ी सी चीजें दे दी जाएंगी और फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब आप इस तरीके से बार बार रिजेक्ट होते रहेंगे तो जो भी समूह है जिसे हम अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहना चाहेंगे, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो अंग्रेजों की इस करतूत पर नाराज हो जाएंगे, उन्हें गुस्सा आएगा कि ये क्या, हमें क्या भिखमंगा समझ रखा है, हम मांगते हैं और वो रिजेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा बस ऐसे डाल देते हैं जैसे कि हम भिखमंगे हों। इसका मतलब यह हुआ कि स्वाभाविक तौर पर उस संगठन में एक ऐसा समूह बनेगा जो अंग्रेजों के खिलाफ, आप यूं कह लीजिए कि आग उगलने वाला समूह होगा कि नहीं नहीं ये ऐसी हमारी बात नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे, यानी कि उनको ऐसा लगेगा जैसे इनके खिलाफ जो है ना आंदोलन छेड़ना चाहिए, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन हो या जो भी हो, हम इसके तेज तर्रार तरीके से अपनी मांगे रखेंगे, इन पर हम दबाव डालेंगे कि वो हमारी बातें माने। तो इस तरीके से एक दूसरा समूह अस्तित्व में आ जाएगा जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के रूप में देखते हैं, और लोकमान्य तिलक आप जानते हैं कि वो गरम दल के लीडर थे, लीडर ना भी कहें तो गरम दल के सदस्य थे। तो अब जो है गरम दल भी अपनी बातें रखने लगा और सच पूछे तो नरम दल की आलोचना भी करने लगा, ये क्या है, आप अपना एक एप्लीकेशन, बैठक हुई कांग्रेस की, मीटिंग हो गई, मीटिंग में कुछ प्रस्ताव पारित कर लिए गए, इसके बाद आवेदन पत्र बना लिया गया और वायसराय को भेज दिया गया, वायसराय ने उसमें से 95% रिजेक्ट करके 5% मान लेते हैं, ये क्या मतलब है। तो जो 1908 का जो सुधार का प्रस्ताव आया था, देखिए वो इसलिए आया था कि जो गर्मपंथी हैं, सरकार पर उनका दबाव पड़ने लगा था, नंबर एक। इस बीच में एक और भी घटना घटित हुई थी, इसे भी मैं यहां पर बताना चाहूंगा। ये जो घटना थी दोस्तों, ये बंगाल के विभाजन की घटना थी। जो लॉर्ड कर्जन थे वो भारत में वायसराय बनाकर भेजे गए। लॉर्ड कर्जन, अगर आप ऑनलाइन मेरा लेक्चर सुनेंगे तो उसमें मैंने लॉर्ड कर्जन की जो बैकग्राउंड रही है उसके बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा की है, और फिर ये बताने की कोशिश की है कि लॉर्ड कर्जन की ये जो नीतियां हैं, वो जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं, वो क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी इस तरह की बैकग्राउंड रही है। यहां मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि देखिए, जब कंपनी का शासन था तो हमारे यहां जो गवर्नर जनरल भेजे जाते थे वो आर्मी बैकग्राउंड के ज्यादा होते थे, क्योंकि यहां युद्ध लड़ना पड़ता था ना उनको तो। लेकिन अब जब ब्रिटेन का शासन आ गया तो देखिए, ब्रिटेन अब युद्ध नहीं लड़ रहा है रियासतों के साथ, राजा महाराजाओं के साथ, उन्हें युद्ध नहीं लड़ना पड़ रहा है। उन्हें तो स्वतंत्रता आंदोलन अगर छिड़ गया है तो उसको संभालना पड़ रहा है, उसे कुचलना पड़ रहा है, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन युद्ध तो नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बकायदे रियासतों को कहा कि ठीक है, आप हमारी ये बात मान लीजिए, आप अपना शासन कीजिए। उन्होंने अपना शासन करना शुरू कर दिया तो युद्ध का मामला खत्म हो गया है। तो जब युद्ध का मामला खत्म हो गया तो यहां जब वायसराय भेजेंगे, जब वो गवर्नर जनरल भेजेंगे, तो वो कौन लोग होंगे? तो ज्यादातर इस बीच में जो हमारे यहां वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों हालांकि एक ही हैं जो आए हैं, वे उनके अपर हाउस के मेंबर रहे, या तो अपर हाउस के मेंबर रहे या लोअर हाउस के मेंबर रहे। जैसे मैंने कहा लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड शब्द ही बताता है कि वो राज्यसभा के सदस्य रहे होंगे, भारत की भाषा में बात कर रहा हूं मैं, मतलब वहां का जो अपर हाउस है वो उसके सदस्य रहे होंगे। एक बात यहां आप और ध्यान में रखिएगा, हमारे यहां स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। ब्रिटेन में उस समय दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां थी, अभी भी यही दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, छुटपुट के तो लोग नाम भी नहीं जानते। एक है कंजर्वेटिव दल और दूसरा लेबर पार्टी। लेबर पार्टी, उसका नाम लेबर पार्टी ही है और इनका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। अब आप देखिए कि अगर आप नाम पर जाएं तो आपको इन दोनों के चरित्र में जो अंतर है वो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। कंजर्वेटिव यानी कि ये उदार किस्म के लोग नहीं है, ये बहुत ही कंजर्वेटिव है, संकीर्ण मस्तिष्क के लोग हैं, इनकी सोच जो है वो संकीर्ण है। अब आप थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि जैसे हम आजादी मांग रहे हैं, ठीक है, और उस समय ब्रिटेन पार्लियामेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी का बहुमत है, निर्णय तो इन्हीं को लेना है क्योंकि पीएम बहुमत के नेता हैं। तो अब आप बताइए कि हमारी मांगों के बारे में ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है इसका नजरिया क्या होगा, वो किस तरह का व्यवहार हमसे करेंगे। दूसरी जो पार्टी है वो लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी नाम से ही है, देखिए कि उदारवादी पार्टी होगी क्योंकि वो लेबर के बारे में सोचती है। लेबर के बारे में सोचने का मतलब है कि जो शोषित किए जाते हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, वो उनके हितों के बारे में सोचती है, यानी कि लिबरल पार्टी है। उसके जो विचार हैं वो थोड़े से व्यापक है, थोड़े से उदार किस्म के हैं। अब स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में जो पहले मैंने प्रश्न किया उसे दोहरा दीजिए कि हमारी मांगों के बारे में लेबर पार्टी की अप्रोच क्या होगी। मुझे लगता है कि इसका उत्तर ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो हमारी मांगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखेंगे क्योंकि उनकी तो सोच संकीर्णता वाली है ना, यानी हम शासक हैं, हम राजा महाराजा हैं, ये कौन होते हैं अपने राज्य की मांग करने वाले, इनकी मांग हटाओ, ये नहीं मानना, ये नहीं मानना, ये नहीं मानना, थोड़ा बहुत दे दो। लेकिन जो लेबर पार्टी होगी वो सोचेगी कि नहीं, देश तो उनका है, हमने इस पर शासन किया है और ये जो मांग रख रहे हैं ये बहुत ही डेमोक्रेटिक मांग है, अपने लोगों के हित के लिए रख रहे हैं, अपने लोगों के कल्याण की बात वो कर रहे हैं, तो इन्हें मानना चाहिए। तो हमेशा ये हुआ है कि जब भी लेबर पार्टी का शासन ब्रिटेन में रहा है तब हमारी मांगें ज्यादा मानी गई हैं, लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसने ऐसा नहीं किया है। इस तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब आपके दिमाग में ये तथ्य रहेंगे तो भारत में ये सब चीजें क्यों हो रही हैं ये आपकी समझ में आसानी से आने लगेगी। हालांकि इतना समझ पाना और इतनी चीजों को जोड़कर देख पाना एक स्टूडेंट के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कितना संभव हो सकता है दोस्तों मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैंने अपने ऑनलाइन लेक्चर में जो घटनाओं का विश्लेषण किया है और जो चीजें बताने की कोशिश की है उसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये बताया है कि यह जो डिसीजन ले रहा है ब्रिटेन, ये क्यों ले रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो उसमें स्वाभाविक तौर पर इसकी भी चर्चा आएगी ही आएगी कि वहां किस पार्टी का शासन है। ये दो बातें आपको और ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। उसको ये लग रहा था कि जो बंगाल है ये स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बनता चला जा रहा है, इस बंगाल को अलग अलग राज्यों में बांट दो तो ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय तक गर्म पंथियों के प्रभाव के कारण छिटपुट छिटपुट घटनाएं होने लगी थी अंग्रेजों के विरुद्ध। तो उसने बंगाल का विभाजन कर दिया, और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो पूरा देश इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ कि ये क्या कर रहे हो। और वहां से सच पूछिए तो स्वराज्य की मांग की भावना उठी कि नहीं नहीं, अब अंग्रेज हमारी बात नहीं सुनने वाले, नहीं मानने वाले, हमको तो अपना ही राज्य चाहिए। पूरे देश में स्वदेश की भावना प्रबल होने लगी, अंग्रेजों के खिलाफ आप यूं कह लीजिए कि क्रोध का भाव बढ़ने लगा। तब दो बातें हो गई, एक तो गर्मपंथी जो है उनका दबाव पड़ने लगा, दूसरा यह है कि बंगाल के विभाजन के कारण देश में भी अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। तो इसको देखते हुए फिर अंग्रेजों को लगा कि यार नहीं, एक सुधार का प्रस्ताव तो भेजना चाहिए कि भाई हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं। अब मजेदार बात है कि जो सुधार का प्रस्ताव भेजेंगे वो प्रस्ताव किस तरीके के होंगे, सीधी सी बात है कि डेमोक्रेटिक तरीके के होंगे कि हम आपका शासन आपको ही सौंप रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो विधान परिषद है इसका विस्तार कर दिया जाएगा, यानी कि इसके मेंबर्स बढ़ा दिए जाएंगे, और ये जो विधान परिषद है इसकी शक्तियां भी ज्यादा कर दी जाएंगी, इनका कार्यक्षेत्र भी बढ़ा दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसको भी हम डेवलप करेंगे। अब देखिए, जब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसी चीजों को डेवलप करेंगे तो सीधी सी बात है कि उसमें तो भारतीयों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उनका रोल उसमें बढ़ जाएगा। तो ये मैंने तीन पॉइंट अभी केवल आपके सामने रखे हैं, जब आप किताबों में जाएंगे तो आपको विस्तार से जो मिंटो मार्ले सुधार प्रस्ताव है वो पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन चूंकि इन तीनों का संबंध डेमोक्रेसी से है और मतलब मेन पॉइंट्स से है, इसलिए मैंने केवल इन तीन पॉइंट्स की चर्चा आपसे की है। तो दोस्तों, चूंकि अब वक्त हो चला है तो मुझे अपनी बात यही समाप्त करनी पड़ेगी, लेकिन टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसे हम लोग जारी रखेंगे ताकि ये जो पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट का जो करेक्टर है वो आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। तो आज बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, दो दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।